आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
मंटो का अफसाना, हज्जे अकबर। इम्तियाज और सगीर की शादी हुई तो शहर भर में धूम मच गई। आतिशबाजियों का रिवाज बाकी नहीं रहा था, मगर दूल्हे के बाप ने इस पुरानी याशी पर बेदरेग रुपया सर्फ किया। जब सगीर जेवरों से लदे फंदे सफेद बुर्राक घोड़े पर सवार था तो उसके चारों तरफ अनार छूट रहे थे। मेहताबियां अपने रंग बिरंग शोले बिखेर रही थी, पटाखे छूट रहे थे। सगीर खुश था, बहुत खुश कि उसकी शादी इम्तियाज से तय पाई गई थी, जिससे आपको बेपनाह मोहब्बत थी। सगीर ने इम्तियाज को एक शादी की तकरीब में देखा। उसकी सिर्फ एक झलक उसे दिखाई दी थी, मगर वो उस पर सौजान से फरेफ्ता हो गया और उसने दिल में अहद किया कि वो उसके अलावा किसी और को अपनी रफीकाए हयात नहीं बनाएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर ना हो जाए। दुनिया इधर की उधर ना हुई। सगीर ने इम्तियाज से मिलने के रास्ते ढूंढ लिए। शुरू शुरू में उस खूबरू लड़की के हिजाब आड़े आया, लेकिन बाद में सगीर को उसका इल्तिफात हासिल हो गया। सगीर बहुत मुखलिस दिल नौजवान था, उसमें रियाकारी नाम को भी ना थी। उसको इम्तियाज से मोहब्बत हो गई तो उसने ये समझा कि उसे अपनी जिंदगी का असल मकसद हासिल हो गया है। उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि इम्तियाज उसे कबूल करेगी या नहीं। वो इस किस्म का आदमी था कि अपनी मोहब्बत के जज्बे ही के सहारे सारी जिंदगी बसर कर देता। उसको जब इम्तियाज से पहली मर्तबा बात करने का मौका मिला तो उसने गुफ्तगू की इब्तदा ही इन अल्फाज से की, देखो लाली, मैं एक नामुहरम आदमी हूं, मैंने मजबूर किया है कि तुम मुझसे मिलो। अब इस मिलाप का अंजाम नेक होना चाहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे अलावा और कोई औरत जिंदगी में नहीं आएगी। ये मेरे जमीर और दिल की इकट्ठी आवाज है। तुम भी वादा करो कि जब तक मैं जिंदा हूं मुझे कोई आजार नहीं पहुंचाओगी और मेरी मौत के बाद भी मुझे याद करती रहोगी, इसलिए कि कब्र में भी मेरी सूखी हड्डियां तुम्हारे प्यार की भूखी होंगी। इम्तियाज ने धड़कते हुए दिल से वादा किया कि वो इस अहद पर कायम रहेगी। इसके बाद उन दोनों में छुप छुप के मुलाकातें होती रहीं। सगीर उसको निकाह से पहले हाथ लगाना बहुत बड़ा गुनाह समझता था। इन मुलाकातों में इनका मौजू इश्क और मोहब्बत नहीं होता था। सगीर मुतमईन था कि इम्तियाज उसकी मोहब्बत की दावत कबूल कर चुकी है, इस पर अब और ज्यादा गुफ्तगू करने की क्या जरूरत थी। वैसे वो अपनी महबूबा से मिलना इसलिए जरूरी समझता था कि वो उसके आदतों खसाइल से वाकिफ हो जाए और वो भी उसको अच्छी तरह जान पहचान ले, ताकि वो उसकी जिबिल्लत का अंदाजा कर सके और उसको शिकायत का कोई मौका ना दे। उसने एक दिन इम्तियाज से बड़े गैर आशिकाना अंदाज में कहा, ताजी, मैं अब भी तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने मुझमें कोई खामी देखी है, अगर मैं तुम्हारे मियार पर पूरा नहीं उतरा तो मुझसे साफ साफ कह दो। तुम किसी बंधन में गिरफ्तार नहीं हो। तुम मुझे दुत्कार दो तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी मोहब्बत मेरे लिए काफी है। मैं इसके और इन मुलाकातों के सहारे काफी देर तक जी सकता हूं। इम्तियाज उससे बहुत मुतासिर हुई। उसका जी चाहा कि सगीर को अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर दे, मगर वो उसे नापसंद करता, इसलिए उसने अपने जज्बात अंदर ही अंदर मसल डाले। वो चाहती थी कि सगीर उससे फलसफियाना बातें ना करे, लेकिन कभी कभी इस तौर पर भी उससे पेश आए जिस तरह फिल्मों में हीरो अपनी हीरोइनों से पेश आता है, मगर सगीर को ऐसी आमियाना हरकत से नफरत थी। बहरहाल उन दोनों की शादी हो गई। पहली रात को हुजले उरूसी में जब सगीर दाखिल हुआ तो इम्तियाज छींक रही थी। वो बहुत मुतफक्किर हुआ। इम्तियाज को बिलाशुबा जुकाम हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका खाविन इस मामूली से आरजे की तरफ इतना मुतवज्जा हो कि उसकी तमाम उमंगों को फरामोश कर दे। वो सर तापा सुपुर्दगी थी, मगर सगीर को इस बात की तश्वीश थी कि इम्तियाज उसकी जान से ज्यादा अजीज हस्ती अलील है। चुनांचे उसने फौरन डॉक्टर बुलवाया, जो दवाइयां उसने तजवीज की बाजार से खरीद कर लाया, और अपनी नई नवेली दुल्हन को, जिसको डॉक्टर की आमद से कोई दिलचस्पी थी न अपने खाविन की तीमारदारी से, उसे मजबूर किया कि वो इंजेक्शन लगवाए और चार चार घंटे के बाद दवा पी। जुकाम कुछ शदीद किस्म का था, इसलिए चार दिन और चार रातें सगीर अपनी दुल्हन की तीमारदारी में मसरूफ रहा। इम्तियाज चढ़ गई, वो जाने क्या सोचकर उरूसी जोड़ा पहने सगीर के घर आई थी, मगर वो बेकार उसके जुकाम को दुरुस्त करने के पीछे पड़ा हुआ था। जैसे दूल्हा दुल्हन के लिए बस एक यही चीज अहम है, बाकी और बातें फिजूल हैं। तंग आकर एक दिन उसने अपनी जरूरत से ज्यादा शरीफ शौहर से कहा, आप छोड़िए मेरे इलाज मुआलजे को, मैं अच्छी भली हूं। फिर उसने दावत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, मैं दुल्हन हूं, आपके घर आई हूं और आपने उसे अस्पताल बना दिया। सगीर ने बड़े प्यार से अपनी दुल्हन का हाथ दबाया और मुस्कुरा कर कहा, ताजी खुदा ना करे कि अस्पताल हो, ये मेरा घर नहीं तुम्हारा घर है। इसके बाद इम्तियाज को जो फौरी शिकायत थी रफा हो गई और वो शीरो शक्कर होकर रहने लगे। सगीर उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसको हमेशा इम्तियाज की सेहत, उसके जिस्म की खूबसूरतियों और उसको तरोताजा देखने का ख्याल रहता। वो उसे कांच के नाजुक फूलदान की तरह समझता था जिसके मुतालिक हर वक्त ये खदशा हो कि जरा सी बेतियाती से टूट जाएगा। इम्तियाज और सगीर का रिश्ता दोहरा था। दो भाई असगर हुसैन और अमजद हुसैन थे, खाते पीते ताजिर। सगीर बड़े भाई असगर हुसैन का लड़का था और इम्तियाज अमजद हुसैन की बेटी। अब ये दोनों मियां बीवी थे। शादी से पहले दोनों भाइयों में कुछ इख्तलाफ थे जो इसके बाद दूर हो गए थे। इम्तियाज की दो बहनें और थी जो उस पर जान छिड़कती थी। इम्तियाज का ब्याह हुआ तो उन दोनों की बारी कुदरती तौर पर आ गई। वो अपने घरों में आबाद बहुत खुश थी, कभी कभी इम्तियाज से मिलने आती और सगीर के अखलाक से बहुत मुतासिर होती। उनकी नजर में वो आइडियल शौहर था। दो बरस गुजर गए, इम्तियाज के यहाँ कोई बच्चा ना हुआ। दरअसल सगीर चाहता था इतनी छोटी उम्र में वो औलाद के बखेड़ों में ना पड़े। उन दोनों के दिन अभी तक खेलने कूदने के थे। सगीर उसे हर रोज सिनेमा ले जाता, बाग की सैर कराता, नहर के किनारे किनारे उसके साथ चहलकदमी करता। उसकी हर आसाइश का उसे ख्याल था, बेहतरीन से बेहतरीन खाने, अच्छे से अच्छे बावर्ची। अगर इम्तियाज कभी बावर्ची खाने का रुख करती तो वो उससे कहता, ताजी अंगीठियों पर पत्थर के कोयले जलते हैं, उनकी बू बहुत बुरी होती है और सेहत के लिए भी नामुफीद। मेरी जान तुम अंदर ना जाया करो, तो नौकर है, खाने पकाने का काम जब तुमने उनके सुपुर्द कर रखा है तो फिर इस जहमत की क्या जरूरत। इम्तियाज मान जाती। सर्दियों में सगीर का बड़ा भाई अकबर, जो नैरोबी में एक अरसा से मुकीम था और डॉक्टर था, किसी काम के सिलसिले में कराची आया तो उसने सोचा कि चलो लाहौर सगीर से मिलाएं। बाजरिए हवाई जहाज पहुंचा और अपने छोटे भाई के पास ठहरा। वो सिर्फ चार रोज के लिए आया कि हवाई जहाज में उसकी सीट पांचवें रोज के लिए बुक थी, मगर जब उसकी भाभी ने, जो उसकी आमद पर बहुत खुश हुई थी, इसरार किया तो छोटे भाई सगीर ने उससे कहा, भाईजान आप इतनी देर के बाद आए हैं, कुछ दिन और ठहर जाइए। मेरी शादी में आप शरीक नहीं हुए थे, जितने दिन आप फालतू ठहरेंगे उन्हें जुर्माना समझ लीजिएगा। इम्तियाज मुस्कुराई और अकबर से मुखातिब हुई, और फिर मुझे आपने शादी पर कोई तोहफा भी तो नहीं दिया। मैं जब तक वसूल नहीं कर लूंगी आप कैसे जा सकते हैं, और आपको मैं जाने भी कब दूंगी। दूसरे रोज अकबर उसको साथ लेकर गया और सच्चे मोतियों का एक हार ले दिया। सगीर ने अपने भाई का शुक्रिया अदा किया, इसलिए कि हार बहुत कीमती था, कम से कम 5,000 रुपए का होगा। उसी दिन अकबर ने वापस नैरोबी जाने का इरादा किया और सगीर से कहा कि वो हवाई जहाज में उसके टिकट का बंदोबस्त करे, इसलिए कि उसकी लाहौर शहर में काफी वाकिफियत थी। अकबर ने उसको रुपए दिए, मगर उसने बरखुरदाना अंदाज में कहा, आप अभी अपने पास रखिए, मैं ले लूंगा, और टिकट का बंदोबस्त करने चला गया। उसे कोई दिक्कत ना हुई, इसलिए कि हवाई जहाज सर्विस का जनरल मैनेजर उसका दोस्त था, उसने फौरन टिकट दे दिया। सगीर कुछ देर उसके साथ बैठ गप लड़ाता रहा, इसके बाद घर का रुख किया। मोटर गैराज में बंद करके वो अंदर दाखिल हुआ, लेकिन फौरन बाहर निकल आया। गैराज से मोटर निकाली और उसमें बैठकर जाने कहां रवाना हो गया। अकबर और इम्तियाज देर तक उसका इंतजार करते रहे, मगर वो ना आया। उन्होंने मोटर के आने और गैराज में बंद किए जाने की आवाज सुनी थी, मगर उन्होंने सोचा कि शायद उनके कानों को धोखा हुआ था, इसलिए कि सगीर मौजूद था ना उसकी मोटर, मगर वो गायब कहां हो गया था। अकबर को वापस जाना था, मगर उसने पूरा एक हफ्ता इंतजार किया, इधर उधर कई जगह पूछगछ की, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, मगर सगीर की कोई सुनगुन ना मिली। आखिरी दिन जबकि अकबर जा रहा था, पुलिस स्टेशन से इत्तला मिली कि PBLK100059 नंबर की मोटर कार जिसके एक खाने में सगीर अख्तर नाम का लाइसेंस निकला है हवाई अड्डे के बाहर कई दिनों से पड़ी है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि अकबर अमजद हुसैन नाम के एक आदमी ने 8 रोज पहले हवाई जहाज में नैरोबी का सफर किया है। अकबर की सीट नैरोबी के लिए बुक थी। इम्तियाज से रुख्सत लेकर जब वो केन्या पहुंचा तो उसे बड़ी मुश्किलों के बाद सिर्फ इतना मालूम हुआ कि एक साहब जिनका नाम अकबर अमजद था हवाई जहाज के जरिए से यहां पहुंचे थे। एक होटल में 2 रोज ठहरे, इसके बाद चले गए। अकबर ने बहुत कोशिश की मगर पता ना चला। इस दौरान में उसको इम्तियाज के कई खत आए। पहले 2-3 खतों की तो उसने रसीद भेजी, इसके बाद जो भी खत आता फाड़ देता कि उसकी बीवी ना पढ़ ले। 10 बरस गुजर गए। अमजद हुसैन यानी इम्तियाज का बाप बहुत परेशान था। बहुत लोगों का ख्याल था कि सगीर मर खप चुका है, मगर अमजद का दिल नहीं मानता था। कहीं उसकी लाश ही मिल जाती, खुदकुशी करने की क्या वजह हो सकती है। बड़ा नेक, शरीफ और बरखुरदार लड़का था। अमजद को उससे बहुत मोहब्बत थी। एक ही बात उसकी समझ में आती थी कि उसकी बेटी इम्तियाज ने कहीं उस जैसे जकी उल हिस आदमी को ऐसी ठेस न पहुंचाई हो कि वो शिकस्ता दिल होकर कहीं रूपोश हो गया है। चुनांचे उसने इम्तियाज से कई मर्तबा इस बारे में पूछा, मगर वो साफ मुनकिर हो गई। खुदा और रसूल की कसमें खाकर उसने अपने बाप की तशफी कर दी कि उससे ऐसी कोई हरकत सरजद नहीं हुई। अक्सर औकात वो रोती भी थी। उसको सगीर याद आता था, उसकी नरमो नाजुक मोहब्बत याद आती थी, उसका वो धीमा धीमा नसीम सहरी का सलूक याद आता था जो उसकी फितरत थी। अमजद हुसैन का एक दोस्त हज को गया, वापस आया तो उसने उसको ये खुशखबरी सुनाई कि सगीर जिंदा है और एक अरसे से मक्के में मुकीम है। अमजद हुसैन बहुत खुश हुआ। उसको उसके दोस्त ने सगीर हिंदी का अता पता बता दिया था। उसने अपनी बेटी इम्तियाज को तैयार किया कि वो उसके साथ हिजाज चले। फौरन हवाई जहाज के सफर का इंतजाम हो गया। इम्तियाज जाने के लिए तैयार नहीं थी, उसको झिझक सी महसूस हो रही थी। बहरहाल बाप बेटी सरजमीन हिजाज पहुंची, हर मुकद्दस मुकाम की जियारत की। अमजद हुसैन ने एक एक कोना छान मारा, मगर सगीर का पता ना चला। चंद आदमियों से जो उसको जानते थे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि वो अपनी आमद से 10 रोज पहले, क्योंकि उसे किसी ना किसी तरीक से मालूम हो चुका था कि आप तशरीफ ला रहे हैं, खिड़की से कूदा और गिरकर हलाक हो गया। मरने से चंद लम्हात पहले उसके होठों पर एक लफ्ज कांप रहा था, गालिबन इम्तियाज था। उसकी कब्र कहाँ थी, वो कब और कैसे दफन हुआ, इसके मुतालिक सगीर के जानने वालों ने कुछ न बताया। ये उनके इल्म में नहीं था। इम्तियाज को यकीन आ गया कि उसके खाविंद ने खुदकुशी कर ली है। उसको शायद इसका सबब मालूम था, मगर उसका बाप ये मानने से यकसर मुनकिर था। चुनांचे उसने कई बार अपनी बेटी से कहा, मेरा दिल नहीं मानता, वो जिंदा है, वो तुम्हारी मोहब्बत की खातिर उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक खुदा उसको मौत के फरिश्ते के हवाले ना कर दे। मैं उसको अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारी जगह अगर वो मेरा बेटा होता तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझता। ये सुनकर इम्तियाज खामोश रही। वो सर जमीन हिजाज से बेनीले मराम वापस आ गए। 1 बरस और गुजर गया। इस दौरान में अमजद हुसैन बड़ी मुहलिक बीमारी यानी दिल के आरजे में गिरफ्तार हुआ और वफात पा गया। मरते वक्त उसने अपनी बेटी से कुछ कहना चाहा, मगर वो बात शायद बड़ी अजियत देह थी कि वो खामोश रहा और सिर्फ सरजनिश भरी निगाहों से इम्तियाज को देखते देखते मर गया। जिसके बाद इम्तियाज अपनी बहन मुमताज के पास रावलपिंडी चली गई। उनकी कोठी के सामने एक और कोठी थी जिसमें एक अधेड़ उम्र का मर्द जो बहुत थका थका सा दिखाई देता था, धूप तापता और किताबें पढ़ता रहता था। मुमताज उसको हर रोज देखती। एक दिन उसने इम्तियाज से कहा, मुझे ऐसा मालूम होता है ये सगीर है, क्या तुम नहीं पहचान सकती हो, वही नाक नक्शा है, वही मतानत, वही संजीदगी। इम्तियाज ने उस आदमी की तरफ गौर से देखा और एकदम चिल्लाई, हाँ हाँ वही है। फिर फौरन रुक गई और आहिस्ते से बोली, लेकिन वो कैसे हो सकते हैं, वो तो वफात पा चुके हैं। उन्हीं दिनों उन दोनों की छोटी बहन शहनाज भी आ गई। मुमताज और इम्तियाज ने उसको ये कब्ल अज वक्त मुरझाया और अफसुरदा मर्द दिखाया जिसकी दाढ़ी खिचड़ी थी और उससे पूछा, तुम बताओ उसकी शक्ल सगीर से मिलती है कि नहीं। शहनाज ने उसको बड़ी गहरी नजरों से देखा और फैसला कुन लहजे में कहा, शक्ल मिलती क्या है, ये खुद सगीर है, 100% सगीर है। और ये कहकर वो सामने वाली कोठी में दाखिल हो गई। वो शख्स जो किताब पढ़ने में मशगूल था चौंका। शहनाज जिसने शादी के मौके पर उसकी जूती चुराई थी उसी पुराने अंदाज में कहा, जनाब आप कब तक छुपे रहेंगे। उस शख्स ने शहनाज की तरफ देखा और बड़ी संजीदगी इख्तियार करते हुए पूछा, आप कौन हैं। शहनाज तर्रार थी, इसके अलावा उसको यकीन था कि जिससे वो हम कलाम है वो उसका बहनोई है। चुनांचे उसने बड़े नोकीले लहजे में कहा, जनाब मैं आपकी साली शहनाज हूं। उस शख्स ने शहनाज को सख्त नाउम्मीद किया। उसने कहा, मुझे अफसोस है कि आपको गलत फहमी हुई है। इसके बाद शहनाज ने और बहुत सी बातें की, मगर उसने बड़े मुलायम अंदाज में उससे जो कुछ कहा उसका ये मतलब था कि तुम नाहक अपना वक्त जाया कर रही हो। मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम्हारी बहन को जिसके मुतालिक तुम कहती हो कि मेरी बीवी है। मेरी बीवी? मेरी अपनी जिंदगी है और मैं ही उसका खाविंद हूं। शहनाज और मुमताज ने लाख सिर पटका, मगर वो शख्स जिसका नाम रावलपिंडी में किसी को भी मालूम नहीं था मानता ही नहीं था कि वो सगीर है। उसको किसी चीज से दिलचस्पी नहीं थी सिवाय किताबों के। लेकिन शहनाज और मुमताज को मालूम हो गया था कि वो इम्तियाज के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल करता है। उसको ये भी पता चल गया था उस पुरसरार मर्द के नौकर के जरिए से कि वो रातों को अक्सर रोता है, नमाजें पढ़ता है और दुआएं मांगता है कि वो जिंदा रहे। वो चाहता है कि उसको जो अजियत पहुंची है उससे देर तक लुत्फ अंदोज होता रहे। नौकर हैरान था कि इंसान की जिंदगी में ऐसी कौन सी तकलीफ हो सकती है जिससे वो लुत्फ उठा सकता है। सब बातें इम्तियाज सुनती थी और उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि मर जाए। चुनांचे उसने जब ये सुना कि वो शख्स जिसको इम्तियाज अच्छी तरह पहचानती थी उसके नाम से कतन नाशना है, तो उसने एक रोज तोला भर अफीम खा ली और ये जाहिर किया कि उसके सिर में दर्द है और अकेली आराम करना चाहती है। वो आराम करने चली गई, लेकिन शहनाज ने जब उसको गनूदगी के आलम में देखा तो उसे कुछ शुबा हुआ। उसने मुमताज से बात की, उसका माथा भी ठनका। कमरे में जाकर देखा तो इम्तियाज बिल्कुल बेहोश थी। उसको झिझोड़ा मगर वो ना जागी। शहनाज दौड़ी दौड़ी सामने वाली कोठी में गई और उस शख्स से जिसका नाम रावलपिंडी में किसी को मालूम नहीं था सख्त घबराहट में इत्तला दी कि उसकी बीवी ने जहर खा लिया है और मरने के करीब है। ये सुनकर सिर्फ उसने इतना कहा, आपको गलत फहमी है, वो मेरी बीवी नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ इत्तेफाक से एक डॉक्टर आया हुआ है, आप चलिए मैं उसे भेज देता हूँ। शहनाज गई तो वो अंदर कोठी में गया और अपने भाई अकबर से कहा, ये कोठी जो सामने है उसमें किसी औरत ने जहर खा लिया है, भाईजान आप जल्दी जाइए और कोशिश कीजिए कि बच जाए। उसका भाई जो नैरोबी में बहुत बड़ा डॉक्टर था इम्तियाज को ना बचा सका। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो उसका रद्द अमल बहुत मुख्तलिफ था। इम्तियाज फौरन मर गई और अकबर अपना बैग लेकर वापस चला गया। सगीर ने उससे पूछा, क्या हाल है मरीजा का। अकबर ने जवाब दिया, मर गई। सगीर ने अपने होंठ भींचकर बड़े मजबूत लहजे में कहा,
मैं जिंदा रहूंगा,
लेकिन एकदम संगीन फर्श पर लड़खड़ाने के बाद गिरा। और जब अकबर ने उसकी नब्ज देखी तो वो साकित थी।